परवाज दी, मैंने खुद को तबला आवाज दी। मैं चल पड़ी अब कोई भी रोको ना, मेरी सोच को जब परवाज दी, मैंने खुद को तबला आवाज दी, अब रोको ना। मुझे हर किसी ये मंजूर नहीं, मंजिल भी अब दूर नहीं, खुद क्षमा मैं जलाऊंगी राहों पे, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा, खुद क्षमा मैं जलाऊंगी राहों पे, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा।
ओम शांति। रूहानी क्रांति अर्थात रूहानी जागृति। दुनिया में कोई जब फौजी लोग होते हैं या मिलिट्री वाले होते हैं तो उनके लिए हमेशा यही कहा जाता है कि कोई भी विदेशी यदि हमारे देश में गलत व्यवहार करते हैं या गलत करते हैं तो उनको आतंकवादी कहते हैं, इसलिए उनको जागृत किया जाता है मिलिट्री वालों को या किसी फौजियों को। तो ऐसी जागृति का जो जुनून होता है उनके अंदर उसके प्रति वो अपनी जान भी दे देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रूहानी चैन। यह स्वयं परमात्मा आकर के हम आत्माओं को जगाते हैं और कहते हैं कि बच्चे तुम आत्माएं अपनी नई दुनिया का निर्माण करने के लिए आप जो जागे हो, आपके अंदर ऐसी रूहानी क्रांति ऐसी अपने अंदर जगाओ जो दुनिया की आत्माएं जो आज दुख और अशांति का जो अनुभव कर रही हैं, ऐसी आत्माओं को भगवान का बनाओ और भगवान का बनाने से जो सुख और शांति का जो अनुभव होता है वो शायद है कि दुनिया की किसी भी क्रांति में नहीं होता है, क्योंकि सबसे बड़ी क्रांति परमात्मा का बनाना। रूहानी चैन। एक व्यक्ति विवेकानंद के पास जाता है और कहता है कि पता नहीं मेरे मन में बहुत उलझन और बेचैनी है, मैं अपने आप को घबराया घबराया महसूस करते हैं। तो विवेकानंद पूछते हैं ऐसे कैसे आप बेचैनी का अनुभव करते हैं, तो व्यक्ति कहता है कि हमारे कुछ लोग हैं जो उन्होंने मेरे जीवन में कुछ गलत व्यवहार किया है और ऐसा लगता है कि मैं उनसे बदला लूं, तो वो बदले की जो भावना है वो मेरे मन में व्यर्थ चलता रहता है और उससे हम बहुत मन से भी दुखी हो जाते हैं और कभी कभी हम अपने तन से भी दुखी हो जाते हैं। दूसरी बात, उन्होंने मेरे जीवन में जो दुख दिया है, जो गलत व्यवहार किए हैं, और वही मेरे से आगे भी बढ़ रहे हैं, और जो वो आगे बढ़ रहे हैं उससे उस आगे चीज को देखने से भी हमारे को और ज्यादा गुस्सा आता है। तो विवेकानंद ने कहा कि चलो ठीक है, यदि आपने उनसे बदला ले भी लिया तो क्या आप संतुष्ट और सुखी बन जाएंगे? व्यक्ति कहता है कि नहीं। यदि वो व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं और आपको परेशानी होने से क्या आप आगे बढ़ रहे हैं? वो कहता नहीं। फिर व्यक्ति कहता है तो ऐसे में मेरे को करना क्या चाहिए? तो विवेकानंद ने सबसे अच्छी बात कही कि जो आपने दूसरे के प्रति जो घृणा भाव के जो संस्कार आपने रखे हैं अपने मन में, जो बदले की भावना जो आपने अपने मन में रखी है उनको आपको निकालना है, या फिर उन संकल्पों को सिर्फ देखना है लेकिन करना नहीं है। देखते देखते ही वो खत्म हो जाएंगे। अगर वो संकल्प आए और आपने उनको करने की भावना प्रत्यक्ष में रखी तो वो आपको दुख देंगे। आपको वही कर्म करना है जो आपके जीवन में जो आपको सुख दे और दूसरों को भी सुख दे। तो व्यक्ति जाता है और अपने जीवन में अपनी मेहनत करता है, और मेहनत करने के बाद जो भी दुश्मनी के जो संस्कार थे, जो भी उसने अपने जीवन में पाल रखे थे, वो छोड़ के खुद मेहनत करता है। और कुछ दिनों के बाद जब विवेकानंद के पास में आता है वो कहता है कि विवेकानंद जी, कि हमारे जो मन में हड़चल थी, जो शरीर में बेचैनी थी, वो समाप्त हो गई क्योंकि हमने वो सारी चीज़ों को छोड़ दिया और हम अपने रास्ते पर अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे जीवन में जो घटना हुई हम बस उसको ही भूल के और हम अपने आप में ही संतुष्ट रहना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज जो आज हम दूसरों के प्रति जो घृणा भाव रखते हैं, हीन भावना रखते हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमें बेचैनी का अनुभव कराते हैं। और जब हम इनको छोड़ देते हैं तो हमें एक सच्चा चैन का अनुभव होता है। उसके बाद 7 अप्रैल 86 बाबा ने मुरली में कहा कि आज सृष्टि की आत्माएं दुखी और अशांत हैं, ऐसी दुखी अशांत आत्माओं को आप रूहानी चैन का अनुभव कराओ। इसमें दुनिया की आत्माएं दुखी का जो अनुभव कर रही हैं उसका पहला कारण बताया है कि प्रकृति के द्वारा। आज देखो व्यक्तियों को, किसानों को आज जरूरत है बारिश की तो बारिश नहीं होती है, फसल नष्ट हो रही है। और किसान को अगर जरूरत है बारिश की, जैसे बारिश की जरूरत नहीं है तो बारिश हो जाती है। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं मनुष्य परेशान है, दूसरा गर्मी से सर्दी से परेशान है। तो प्रकृति के द्वारा कहने, और कहीं भूकंप है, ऐसी चीजों से लोग परेशान हैं। प्रकृति के जो 5 तत्व जो सतो प्रधान थे, जो सुख देने वाले थे, वो आज कहीं ना कहीं किसी भी तरीका से आज मनुष्य आत्माओं को दुख हो रहा है, दुख का अनुभव हो रहा है। दूसरी बात बताई है कि वातावरण से आज हम सभी देख रहे हैं कि आज का वातावरण कैसा है, भय का वातावरण है। और ऐसे भय के वातावरण में आज हर मनुष्य घर से बाहर भी निकलने के लिए डरता है कि आज हम घर में रोग से मुक्त हैं लेकिन पता नहीं अगर हम घर से बाहर गए तो कहीं बीमारी ना हो जाए। और उस बीमारी तो आप देख ही रहे हैं, ऐसी बीमारी है जो किसी को टच भी करने से हो जाती है और वातावरण के भी द्वारा हो जाती है, कोरोना है, वायरस है। तो ऐसे वातावरण, भय के वातावरण से भी लोग परेशान हैं। तीसरा बताया है कि आज मनुष्य आत्माओं से परेशान है। इसके बारे में हम देखेंगे कि आज मनुष्य आत्माओं से परेशान क्यों है। उसमें सबसे पहले 5 विकारी आते, और 5 विकारों में सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो काम विकार है। इस काम विकार के कारण द्वापर से लेके आज कलयुग के अंत तक पता नहीं कितने युद्ध हुए हैं, कितने लोग दुखी हुए हैं, कितने लोगों की जानें गई हुई हैं। तो आज ये काम विकार के कारण ही देखो दुनिया में धन भी कमाते हैं तो भी किसके लिए, काम विकार का ही एक अंश है। दूसरा देखते हैं अगर हम तो सबसे ज्यादा दुख देने वाला क्रोध है। आज कोई व्यक्ति को कोई सेवा दी जाती है, अगर वो सेवा किसी ने नहीं की तो हम प्यार को प्यार से बोलने की बजाय आज हम लोग सीधा डांट देते हैं या गुस्सा करते हैं। देखा जाए तो वो बात कहीं ना कहीं एक दुख का अनुभव करती कराती है आगे वाले व्यक्ति को। उसके बाद ये पांच जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो कहीं ना कहीं इन विकारों से मनुष्य को मनुष्य ही दुख की प्राप्ति हो रही है। चौथा बताया है कि आज मनुष्य आत्माएं अपने ही व्यर्थ संकल्पों से परेशान है। तो व्यर्थ संकल्पों के बारे में तो आप लोगों ने सुना है। पांचवा बताया है कि मनुष्य अपने ही तन से बेचैन है। तन से बेचैन, जैसे कि बहुत सारी अनेक अनेक वैरायटी प्रकार की बीमारियां हैं दुनिया में। हम जैसे देखा जाए, मैं अपने लौकिक से आज दिन तक कभी मुझे बुखार आया तो मैं केवल छोटे डॉक्टर के पास गए। हम जानते ही नहीं थे कि बड़ी बीमारियां होती क्या हैं। एक बार हमारी सेवा लगी हुई थी, हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जो मुलायम सिंह का गांव कभी सुना होगा, सैपई। तो वहां पर एक मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है, और उस मेले में दीदी ने भेजा था कि आपको एक महीने के लिए प्रदर्शनी की सेवा करनी है। तो हमने कही ठीक है दीदी, जाएंगे। लेकिन जहां हम लोगों का कमरा था, तो हॉस्पिटल भी बहुत बड़ा बना है, और उस हॉस्पिटल में अगर शायद देखा जाए तो हजारों से भी ज्यादा रोज मरीज रहते थे, और जो मरीज जो शरीर छोड़ते थे उसके जस्ट सामने मेरा कमरा था जहां से बॉडी को ले जाते थे। तो हमने देखा कि ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन हमने 3 से 4 बॉडी ना देखे हो, शायद इससे ऊपर ही देखे हमने। और वहां जब हमने देखा कि बीमारी, तो लोग ऐसे अनेक अनेक बीमारियों से लोग परेशान थे, तो मुझे पता चला कि असली नरक के बारे में जो बाबा ने बोला वो यही है। जो अनेक बीमारियां अगर देखनी है तो ऐसी जगह पे आना है। तो ऐसी आत्माओं के प्रति बाबा ने कहा है कि तुम महातपस्वी आत्माएं हो। तो महातपस्वी आत्माओं को ऐसे संगठन के स्वरूप से ऐसा वातावरण के वाइब्रेशंस बनाओ, ऐसे प्रकंपन फैलाओ कि ऐसी दुखी आत्माएं सुख और चैन का अनुभव करें। उसके बारे में अगर हम देखते हैं तो सूरज की जो किरणें होती हैं वो कई सारी चीजों की विनाश की प्राप्ति कराती हैं। जैसे कि वातावरण में बहुत सारे कीटाणुओं को खत्म करती है, अनेक गंदगी को खत्म करती है रोशनी। ऐसे ही परमात्मा ने कहा है कि तुम महातपस्वी आत्माएं ऐसी सुख और शांति की किरणों की लहरें फैलाओ कि हर दुखी आत्मा वो सुख और शांति का अनुभव करे। जैसे कि आज प्रकृति तमोप्रधान हो चुकी है, तो प्रकृति को हम पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलाएं। दुनिया की आत्माएं जो आज तमोप्रधान हो चुकी हैं, उन्हें भी पवित्रता की शक्ति का दान दें। तीसरा, जो आज मनुष्य आत्माएं अपने अनेक रोगों से जो परेशान हैं, हम उन्हें सुख और शांति का अनुभव कराएं। इसके लिए विशेष बाबा ने पहले मुरली में कहा है कि ये सब अनुभव कराने के लिए स्वयं में भी वो शक्तियां चाहिए, वो शक्तियों का स्टॉक चाहिए। इसके लिए बाबा ने चार बातें बताई हैं। सबसे पहले बताया है कि हमें अपनी स्वयं की स्मृति में रहना है। दूसरा बताया है कि सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा हो, जो बाबा ने हमें हमारे आदि गुण अनादि गुण जो दिए हैं वो शक्तियों का स्टॉक हो। तीसरा, अगर हम देखते हैं तो पवित्रता, पवित्रता की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। चौथा, परमात्मा की निरंतर याद। पांचवा, अतींद्रिय सुख। अगर ये हम आत्माओं के अंदर ये चीज है तो हम दुनिया में किसी भी आत्मा को सुख और शांति का अनुभव करा सकते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करा सकते हैं। हमें एक बात याद है कि जब भी हम अपना काउंटर बंद करते थे तो एक या दो ग्रुप को ज्ञान जरूर सुनाते थे अपने ओम शांति भवन में। उसके बाद जब ज्ञान सुनाने के बाद ग्रुप को, तो कई ग्रुपों को, ग्रुप के लोग बोलते थे जो टूरिस्ट लोग आते हैं कि भाई जी आप जो आत्मा परमात्मा को याद करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, क्या आप इसी हॉल में करते हैं ओम शांति भवन में? हमने कि इसमें तो केवल हम लोग सुबह क्लास करते हैं जो परमात्मा में ज्ञान देते हैं, लेकिन जो मेडिटेशन करते हैं कभी कभी हम लोग संडे को करते हैं शाम को। बाकी का हम अपने कैंपस में, एक मेडिटेशन हॉल है और एक बाबा का कमरा है जिसमें साकार में बाबा रहते थे, कभी हम ऐसे भी बोल दिया करते थे लोगों को। तो कई लोग बोलते थे कि भाई जी आप हमें बाबा के कमरे में ले जाएंगे? हमने कही ठीक है चलिए। तो एक या दो ग्रुपों को हम लेके गए और बस उनको बाबा के कमरे में छोड़ के अपने कमरे में चले जाते थे। तो सिक्योरिटी वाला भाई जो था उन्होंने कहा कि भाई आप जो ग्रुप ले जाते हो उसको ले जाओ तो गेट पे छोड़ने का, ऐसा नहीं वो अंदर कहीं भी घूमते रहे। हमने कही ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हमने देखा हम महीने में कम से कम ऐसे 5 से 6 ग्रुप आराम से ले जाते थे अंदर घुमाने के लिए। तो कई ग्रुपों को हम समझाने के बाद जैसे 6 लोग हैं उसमें 2 या 3 लोगों को तो ज्ञान अच्छा लग रहा है, बाकी के 2-3 लोग तो कहते हैं कि ये ओम शांति वाले तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं तो वो ठीक से नहीं सुनते हैं। लेकिन हमने देखा जब उनको हम बाबा के कमरे में छोड़ा और हम जब वेट करते उनके आने के लिए, तो जो लोग हमने उनको रोते हुए आते हुए भी देखा, कई लोग रो के निकलते हैं बाबा के कमरे से, जब वो रो के बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि भाई जी आपने जो ज्ञान दिया था अच्छा था, लेकिन जो हमने बाबा के कमरे में जो अनुभव किया उससे सुख और शांति का जो हमने अनुभव किया, ऐसा लगा कि दुनिया में अगर कहीं सुख और शांति है तो इस जगह पर है। सुख शांति का अगर अनुभव होना है तो इस जगह पर होना, माने कराया जा सकता है, ऐसे बोला। और रोग लोग लो माने रो के निकलते हैं, आंसू भी हमने लोगों के देखे थे। तो उसमें कुछ जो 2-3 लोग हैं जो लोग कुछ मजाक समझते थे, ज्ञान सुनाते थे, लेकिन जब वो भी उनके साथ में जब कमरे में जाते तो वो भी एकदम शांति का अनुभव करते, एकदम शांति से निकलते हैं। कहने का मतलब ये है कि उस कमरे में हम तपस्वी आत्माएं तपस्या करते हैं और वो जो तपस्या के जो वाइब्रेशंस हैं वो जो दुनिया की जो आत्माएं हैं उन दुनिया की आत्माओं को सुख और शांति का अनुभव कराते हैं। ऐसे ग्रुप में एक माता थी और उस माता के सर में बहुत दर्द हो रहा था और वो माता बोलती है, उनके जो ग्रुप के लोगों को बहुत चेष्टा कर रहे थे कि नहीं हमें बाबा के कमरे में जाना है, और माता बोलती है कि नहीं आप लोग जाओ, हम नहीं जाएंगे। उसके बाद मैंने कहा कि माताजी कोई बात नहीं, आप एक मिनट बाबा के कमरे को देख लो, क्योंकि ये जगह शायद आप लोग दोबारा कभी ना आ पाए, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ है और उस तीर्थ में सबसे श्रेष्ठ जगह जो बाबा का कमरा है जहाँ आप लोग जा रहे हैं, एक बार जाके तो देखो। माता बोलती मेरे सर में दर्द हो रहा है, हम नहीं जाएंगे। लेकिन वो कैसे भी करके फिर चली जाती है अपने ग्रुप के साथ में बाबा के कमरे में, क्योंकि माने कुछ ना कुछ ग्रुप हम ले जाते रहते थे पार्टी अटेंड करके। तो जब योग जब वो लोग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, 5 मिनट के लिए बाबा के कमरे में जाते हैं, और वो माता जब बाहर निकलती है तो कहती है कि पता नहीं भैया जी हमारे सर में दर्द हो रहा था, लेकिन मेरे सर में दर्द ही नहीं हो रहा है अब। तो कहने का भाव है कि वो जो शक्ति है, जो परमात्मा के जो वाइब्रेशंस उस कमरे के अंदर, वो हमारे कई रोगों को भी खत्म कर देते हैं। तो ऐसे महातपस्वी आत्माएं हम, ब्राह्मण आत्माएं पूरे विश्व को संगठित रूप से हमें सुख और शांति का अनुभव कराना है। एक बात हमें और एक कहानी याद आती है। एक भिखारी अपनी झोली में चावल के 4 दाने डाल के ले जाता है, शायद कि कुछ दानों को डाल के ले जाएंगे तो भीख ज्यादा मिलेगी। तो भिखारी जब निकलता है तो सामने से एक राजा आता है, और वो जो राजा आता है उस राजा के देश में अकाल पड़ा हुआ था, और जो देखते ना हाथ देखते क्या बोलते उनको, ज्योतिष जो होते हैं, तो ज्योतिष को राजा बुलाता है और कहता है कि ऐसा कुछ करो कि हमारे जो राज्य में जो अकाल पड़ गया है, जो बारिश नहीं हो रही है, तो कुछ जीवन में बारिश हो और प्रजा हमारी सुख शांति का अनुभव करें। तो वो ज्योतिष कहता है कि आपको किसी भिखारी से भीख मांगनी पड़ेगी। तो इधर तो वो राजा इस रास्ते से आता है, भिखारी इस रास्ते से आता है। तो भिखारी सोचता है कि आज राजा आ रहा है, लगता है मुझे कुछ ज्यादा मिलने वाला है। तो भिखारी जानबूझ के उसके रथ के आगे खड़ा हो जाता है। तो राजा कहता है कि चलो अच्छा है, भिखारी हमें रास्ते में ही मिल गया। उसके बाद राजा उतरता है और हाथ जोड़ के कहता है कि आप हमें कुछ देंगे। भिखारी तो एक मिनट के लिए तो सोच में ही पड़ जाता है, राजा होके मेरे से भीख मांग रहा है। तो वो थोड़ी सी कंजूसी करता है और एक चावल राजा को दे देता है। तो उसके बाद जब भिखारी अपने घर पे जाता है तो भिखारी की पत्नी कहती है क्या मांग के लाए। तो उदास चेहरा लेके जाता है तो वो जो झोला होता है वो दे देता है। तो जब हाथ डालती है उसकी पत्नी तो देखती है कि जो 4 चावल थे उसमें एक चावल सोने का चावल बन जाता है, माने सोने का चावल मिलता है उसमें। और वो खुश हो जाती है, कहती है वाह आज आपको भीख में एक सोने का चावल मिला। तो कहती क्या सोने का चावल, तो पता चलता है कि वो भिखारी रोने लगता है। अब वो कहती कि आप क्यों रो रहे हो, वो कहता है कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं अगर 4 चावल दे था तो आज मेरे 4 चावल सोने के बन जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बाबा ने जो हमें चार बातें बताई हैं, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, क्या हम चारों से मनुष्य आत्माओं को दान करते हैं, ज्ञान दान करते हैं? क्या हम अपने योग से विश्व की हर आत्माओं को या प्रकृति को सकाश देते हैं? क्या हम परमात्मा के यज्ञ में सेवा करते हैं? क्या जीवन में हमने ज्ञान तो सुना, कपड़े तो बहुत अच्छे पहने, लेकिन धारणा कुछ भी नहीं है? तो बाबा ने कहा है कि आपको चारों बातों में माने सर्टिफिकेट लेना है, चारों सब्जेक्ट में पास होना है। चारों सब्जेक्टों को हमें दुनिया के प्रति और आत्मा के प्रति लगानी है। इसमें अगर हम देखते हैं कि कोई बच्चा अगर अपने पिता से दूर हो जाता है या खो जाता है, तो सबसे बड़ा पुण्य कहा जाता है कि बच्चे को पिता से मिला देना। तो ऐसे ही जब हम इस ज्ञान मार्ग में, जो परमात्मा से हमें अपनी स्वयं की स्मृति मिली है, स्वयं का ज्ञान मिला है, हम भगवान के बच्चे बने हैं, हमें दुनिया की हर आत्माओं को उस परमात्मा का बच्चा बना देना है। सबसे बड़ा सुख भगवान का बनाने मिलता है, सबसे बड़ा चैन हम जो अनुभव कर रहे भगवान के बनने के बाद, परमात्मा पिता के बनने के बाद, ऐसी हर दुनिया को परमात्मा पिता का बनाना है। ऐसी जागृति रखनी है सबको देने की, सबको बनाने की। तो आज हम कुछ पांच बातें देखेंगे। तो दुनिया में आज बाबा ने 86 की मुरली में जो कहा है कि आज दुनिया की आत्माएं अपने आप को बेसहारे अनुभव कर रही हैं, ऐसी बेसहारी आत्माओं को हम सारे का अनुभव कराएं अपने बोल से या संकल्पों से, या परमात्मा का बनाएं। दूसरा, ऐसा रूहानी लंगर लगाना है कि ऐसा नहीं कि हम एक दिन तो ज्ञान दिया, एक दिन योग किया और दूसरे दिन ठंडे हो गए। तो हमारी ये तपस्या, ये ज्ञान रेगुलर चलता रहे, इसे कहते हैं अखंड लंगर, अखंड महा लंगर। तीसरा, बाबा ने कहा है कि तुम विदाता हो, तो विदाता के बच्चे आपको हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना है। चौथा, बाबा ने मुल्लिम बोला है कि तुम विश्व कल्याणकारी हो, तो आपको हर आत्मा का कल्याण करना है। तो ऐसे महातपस्वी आत्माओं की विशेषताएं और गुण बाबा ने बताए हैं, जो आज दुनिया में जो दुख और अशांति का अनुभव कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।